नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। बताओ कैसे फोन किया? उसकी ये सवाल पूछने की देर थी कि सृष्टि ने बुलेट ट्रेन की स्पीड में बक बक करते हुए उसको रेहान के साथ उसने जो किया सब बता दिया और अपनी हरकत और रेहान की शक्ल याद करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी निश्चल खिलखिलाती हंसी में अर्जुन खोसा गए, फिर उसकी शरारत याद करते हुए मुस्कुराकर बोला, बहुत शरारती हो तुम। सृष्टि ने खिलखिलाते हुए तुरंत ही जवाब दिया, अभी तो आपने मेरी शरारत देखी नहीं है, वो तो भाई ने रूम से बाहर निकाल दिया मुझे, वरना मैं उनको और परेशान करती और खूब तड़पाती। तुम सच में बहुत खतरनाक हो, जिसकी तुमसे शादी होगी उसे भगवान ही बचाए तुम्हारी शैतानी दिमाग से। मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, सृष्टि ने फट से जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्जुन ने तुरंत ही सवाल किया, क्यों, शादी क्यों नहीं करनी? बस ऐसे ही नहीं करनी, मैं तो सारी जिंदगी आपको ही परेशान करने वाली हूँ। मेरी जैसी शैतान लड़की को कोई और झेल ही नहीं सकता, और फिर मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं जिसकी वजह से कोई मुझे पसंद करे। वैसे भी मैं अपनी इस बेफिक्री भरी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। अगर शादी की तो जिम्मेदारियाँ आएंगी, जो भी मेरी जिंदगी में आएगा वो मुझे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा, और मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती। अच्छा, और अगर कोई जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हें एक्सेप्ट कर ले तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दोस्त और बहन बन सकती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ ना ज्यादा प्रेशर होता है और ना ही ज्यादा उम्मीदें। वो दोनों ही रिश्ते ऐसे हैं जहाँ आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है जैसे आप हो, पर शादी वो रिश्ता है जहाँ आपको अपने पति तो ससुराल वालों के हिसाब से खुद को ढालना ही पड़ता है, वरना रिश्तों में खटास आ जाती है, और मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। देखना, तुम्हें कोई ऐसा बहुत जल्द मिलेगा जो जैसी तुम हो वैसे ही ना सिर्फ तुम्हें एक्सेप्ट करेगा बल्कि तुमसे बहुत मोहब्बत भी करेगा और कभी तुम्हें बदलने की कोशिश भी नहीं करेगा। देखते हैं कौन पागल मुझसे रिश्ता जोड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अर्जुन उसकी बेफिक्री भरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया पर बोला कुछ नहीं। कुछ देर दोनों की बातें चली, फिर गुड नाइट बोलकर दोनों ने फोन काटा और आंखें बंद करके एक दूसरे के ख्यालों में खोए ही नींद की आगोश में चले गए। अगला दिन शुरू हुआ। इस खूबसूरत रात के बाद सुबह भी काफी हसीन हुई। रेहान और रश्मि की सुबह एक दूसरे की बाहों में हुई। उसके बाद वो तैयार होकर बाहर आए। पहली रसोई की रस्म हुई जिसमें सबने रश्मि के खाने की खूब तारीफ की और ढेर सारे गिफ्ट्स भी दिए। उसके बाद कुछ और छोटी मोटी रस्में हुई और मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्हीं में सब उलझे रहे और आज का दिन यूं ही निकल गया। आज भी आरवी सबके साथ रश्मि के घर ही रही और अंशु की वजह से घर में कुछ रौनक भी थी और सबका मन भी लगा हुआ था, पर आज ना तो आरवी की शान से मुलाकात हुई और ना ही बात। अगले दिन गिफ्ट्स मिठाइयों के साथ शान रेहान के घर पहुंचा और रश्मि को विदा करवा कर वापस उसके घर ले आया। कुछ देरों का भी पर आरवी से कोई बात नहीं हुई। अंशु के साथ ही रहा, फिर काम का कहकर निकल गया। आरवी और रश्मि की ढेर सारी बातें हुई। रश्मि मुस्कुराकर उसकी सब रस्मों के बारे में बता रही थी और आरवी भी मुस्कुराकर उसकी बात सुन रही थी, जबकि उसका मन ही जानता था कि उन सब रस्मों के बारे में सुनकर उसे कितनी तकलीफ हो रही थी जो उसके साथ हुई ही नहीं। रश्मि दो दिन रुकी और सबने साथ में खूब इंजॉय किया, फिर रेहान उसको विदा करवा कर ले गया। उसके साथ आरवी भी सबके साथ वापस अनुपमा जी के घर लौट आई। जाने की बात उसने ये कहकर टाल दी कि अभी उसका जाने का मन नहीं है। रश्मि और रेहान की शादी को लगभग एक हफ्ता बीत गया था और दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सृष्टि की शैतानियां जारी थी और वो दोनों को छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ती थी और बाद में बड़े शौक से सारी बात अर्जुन को भी बताती। उसका और अर्जुन का रिश्ता पहले जैसा ही था। अगर सबसे बुरा हाल किसी का था तो वो आरवी और शान का था। शादी के बाद से शान ने फोन करना बंद कर दिया था। कभी करता भी तो अंशु से ही बात करता। मिलने की बात करे तो जिस दिन रश्मि को लेकर आया था उसी दिन आरवी ने आखिरी बार उसे देखा था। मन बेचैन था उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, पर नाराजगी दिखानी थी तो किसी तरह सब्र करे हुए थी। शाम का वक्त था। आज सुबह से ही आरवी का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा था और वजह एज यूजुअल शान ही था। तीन दिन हो गए थे उसको शान को देखे, उससे मिले और बात किए। आखिरी बार आया था तब दिखावे के लिए ही सही कुछ बात तो हुई थी उनकी, पर उसके बाद तो जैसे शान गायब सा हो गया और इसी वजह से आरवी का पारा चढ़ा हुआ था। अंशु अनुपमा जी और छाया के साथ पास की मार्केट में गई थी। घर में आरवी अकेली थी इसीलिए मूड और ज्यादा उखड़ा हुआ था। कुछ देर तो वो टीवी के चैनल घुमाते हुए अपना मन बहलाने की कोशिश करती रही, पर जब कुछ अच्छा नहीं लगा तो गुस्से में टीवी बंद कर दिया और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, बस इतने ही दिनों में आपका प्यार और प्यार के दावे निकल गए। बातें तो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे थे कि मना कर रहेंगे मुझे, मर जाएंगे मेरे बिना, और बस चंद दिनों में सारा फितूर सर से उतर गया। मैं तो पहले से जानती थी कि कोई प्यार व्यार नहीं आपको मुझसे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मेरे होने ना होने से। जानती थी यही अहमियत है मेरी आपकी नजरों में, लेकिन आपकी बातों और कोशिशों ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। पर अच्छा हुआ जो मैंने आप पर और आपकी बातों पर विश्वास करके अपना फैसला नहीं बदला। अब आप अगर वापस भी आए मेरे पास तब भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, फिर से वही गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। आप लायक ही नहीं है मेरे, मैं चली जाऊंगी आपसे और आपकी जिंदगी से बहुत दूर। आरवी ने जैसे ही आखिरी की बात कही उसके घर की डोरबेल बज उठी। आरवी ने खुद को संभाला, चेहरा ठीक किया, लबों पर झूठी मुस्कान सजाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोला और जैसे ही सामने खड़े रेहान और रश्मि पर उसकी नजर पड़ी उसके लबों पर पड़ी सी मुस्कान फैल गई। रश्मि तुरंत आगे बढ़कर चहकते हुए आरवी के गले से लग गई और दोनों सहेलियों ने एक साथ ही सवाल किया, कैसी है तू? दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक साथ ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। आरवी ने अब रश्मि को देखा, डार्क ब्लू सुंदर सी साड़ी और 16 श्रृंगार किए बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी वो, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत सुंदर लग रही है तू, आखिर आरवी ने मन की बात उसे बता ही दी। उसकी बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराकर कहा, भाभी मैं भी यही कहता हूँ कि शादी के बाद और भी खूबसूरत लगने लगी है। दोनों की बात सुनकर रश्मि ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना तामझाम करना पड़ता है, इतनी देर लगती है तैयार होने में, कितनी परेशानी होती है, पर सुंदर भी तो लगती है, पता है ऐसे तैयार होकर कितनी प्यारी लग रही है। तो तू भी हुआ करना ऐसे तैयार, तू तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लगती है जब 16 श्रृंगार करके तैयार होती है तो। रश्मि की बात सुनकर आरवी के चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। उसने फीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए कहा, तुझे ये हक रेहान जी ने दिया है कि तू उनके नाम का श्रृंगार हक से कर सकती है, और जब तू उनके लिए सचती संवरती है तो वो होते हैं तुझे देखने के लिए, तेरी तारीफ करने के लिए। पर ना तो मुझे कभी ये हक मिला और ना ही मेरे सचने पर कोई मुझे देखता है। तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है, मांग में सिंदूर भरती हूँ वो भी किसी का एहसान है मुझ पर। आरवी की बात सुनकर दोनों की मुस्कान फीकी पड़ गई, पर आरवी ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली, आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। सिर्फ हम दो नहीं हैं आरवी, कोई और भी है हमारे साथ, उन्हें भी अंदर आने देगी? रश्मि की बात सुनकर आरवी के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। रश्मि के गंभीर चेहरे को देखते हुए उसने सवाल किया, और कौन आया है साथ? जीजू।
रश्मि ने जैसे ही ये कहा आरवी के चेहरे के भाव बदल गए। रश्मि ने फिर से सवाल किया, उन्हें अंदर आने देगी? मैं कौन होती हूँ उन्हें अंदर आने देने से रोकने वाली, आए हैं तो आ जाए अंदर, वैसे भी ये घर भी अब उन्हीं का है, पैसे देकर उन्होंने ये घर छुड़ाया है तो उन्हीं का हक हुआ अब इस घर पर। आरवी ने बिना किसी भाव के कहा और साइड हट गई, पर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी किसी की सख्त हथेलियों ने उसकी कलाई को पकड़ लिया, साथ ही शान की गंभीर आवाज़ उसके कानों से टकराई, मैंने पैसे देकर बस माँ का बर्डन कम किया था, ये घर कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैं यहाँ किसी चीज़ पर अपना हक जमाने नहीं आया हूँ, कुछ बात करनी है तुमसे, और जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगी मैं अंदर नहीं आऊँगा। शान ने अपनी बात पूरी की और आरवी का हाथ छोड़ दिया, पर वो अब भी वैसे ही खड़ी थी, आंखें नम थीं, कितने दिनों बाद उसकी आवाज़ सुनी थी उसने तो भावुक हो गई थी, उस पर उसकी बातें आरवी के दिल तक पहुंच गई थीं। वो कुछ पल यूं ही खड़ी रही, फिर आगे बढ़ते हुए बोली, आ जाइए तीनों अंदर, और आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। शान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, क्योंकि वो समझ गया था कि आखिरी की लाइन उसके लिए ही थी। तीनों अंदर आए, तब तक आरवी उनके लिए पानी ले आई। वो तीनों एक तरफ बैठे थे जबकि आरवी सामने अकेली। शान ने रश्मि को देखा तो वो उठकर आरवी के पास आ गई और उसका हाथ थामते हुए बोली, आरवी दो हफ्ते बाद प्ले लाइव होना है। कौन सा प्ले? आरवी ने चौंकते हुए उसे देखा। रश्मि ने अब आगे कहा, वही प्ले जिस पर तू जीजू के साथ काम कर रही थी। आरवी एक बार फिर चौंक गई, उसने हैरानी से शान को देखकर कहा, अब वो प्ले करके आप क्या करना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं करना चाहता, प्ले की डेट पहले ही फिक्स थी, मुझे नहीं पता था कि बीच में ये सब हो जाएगा और चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। भले ही जो मैंने सोचा वो सब गलत था, पर प्ले की डेट फाइनल हो चुकी है और बहुत पैसा लगा है, इन्वेस्टर्स का बहुत प्रेशर है, प्ले करना ही होगा। अगर फिक्स डेट पर प्ले नहीं हुआ तो करोड़ों का नुकसान होगा, इन्वेस्टर्स नाराज़ होंगे और मार्केट में कंपनी की इमेज खराब होगी। मैंने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए हैं और दो हफ्ते का टाइम है हमारे पास, कल से रिहर्सल शुरू है, और अगर तुम कल नहीं आई तो ना ये रिहर्सल होगी और ना ही ये प्ले होगा। चाहे उसके बाद मुझे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना फेस करनी पड़े, पर इस प्ले को तुमने शुरू किया था और इस रोल को तुमसे बेहतर कोई और नहीं निभा सकता, इसीलिए अगर तुम होगी तो प्ले होगा और अगर तुम नहीं होगी तो प्ले भी नहीं होगा। टू बी कंटिन्यूड।